रंग बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Giridhare Radha, Giridhare Radha. Baladeva Jai Subhadra Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai
शांतनो दास कन्याया
यज्ञे चित्रांगदस्तुतः यज्ञे चित्रांगदस्तुतः वीरयूतग्रणीयेन रामोऽपि दोषितः शान्तनोदासकन्यायाम् यज्ञे चित्रांगदस्तुतः अनुवाद शब्दार्थ इस प्रकार है। वीरयूत अग्रणीया सारे योद्धाओं में अग्रणीय भीष्मदेव एना जिससे रामः अपि भगवान के अवतार परशुराम भी युद्ध में तोषितः संतुष्ट हुआ शांतनो से दास कन्यायाम एक घीवर की कन्या सत्यवती के गर्भ से यज्ञ उत्पन्न हुआ चित्रांगद सुतः पुत्र। अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की इच्छा। अनुवाद भीष्मदेव सारे योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ था। जब उसने परशुराम को युद्ध में हरा दिया तो परशुराम उनसे अत्यंत संतुष्ट हुए।
शांतनु की वीर से घीवर की कन्या सत्यवती की गर्भ से चित्रांगद ने जन्म लिया। तात्पर्य, सत्यवती वास्तव में सुपरिचित वसु की पुत्री थी जो मत्स्य गर्भ नामक मत्स्यवासिनी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। बाद में सती का पालन एक मछुआरे ने किया था। परशुराम तथा भीष्मदेव में जो युद्ध हुआ वह काशीराज की तीन कन्याओं अंबिका, अंबालिका और अंबा के लेकर हुआ, क्योंकि भीष्मदेव ने अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए इन तीन कन्याओं का अपहरण किया था। अंबा ने सोचा था कि भीष्मदेव अपने विवाह कर लेगा, अतएव वह उस पर अनुरक्त रहने लगी। लेकिन भीष्मदेव ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था, अतएव उसने विवाह करने से मना कर दिया। फलतः अंबा विष्णु पितामह के सैन्य गुरु परशुराम के पास गई तो उन्होंने भीष्मदेव से कहा कि वह अपने साथ विवाह कर ले, किंतु भीष्मदेव ने मना कर दिया। अतएव परशुराम ने उसे इसलिए युद्ध किया जिससे वह विवाह करना स्वीकार कर ले, लेकिन परशुराम हार गए, अतः वे भीष्म से संतुष्ट हुए। ओम ज्ञानमीरानंदस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणलिता शिवशाकान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। वे चंद्रवंश की राजाओं की चर्चा हो रही है, खास करके शांतनु का प्रसंग चल रहा है। शांतनु महाभारत का पूरा जो इतिहास है वो शांतनु से शुरू होता है, शांतनु की घटना से। तो शांतनु के और दो भाई थे, तो शांतनु के जो बड़े भाई हैं जिनका नाम है देवापी, तो ये देवापी वो जंगल की ओर चले गए थे, वो राज्य में कोई रुचि नहीं लिया। तो शांतनु राज्य कर रहे थे, तो शांतनु जब राज्य कर रहे थे तो अचानक से बारिश आना सब बंद हो गया, अकाल पड़ा। तो शांतनु ने ब्राह्मणों से विचार किया, ऐसा क्यों है कि मेरे राज्य में अकाल पड़ रहा है। मैंने से कोई गलती नहीं किया है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि आपने अपने जो बड़े भाई का जो हक है उसने आपने छीन लिया है। राजा जो है वो जो बड़ा भाई होता है, अग्रज होता है, राज्य उनका होता है कि देवापी का होता है, तो आपने इस राज्य के ऊपर अपने अधिकार जमा लिया है, तो इसलिए आपको इस प्रकार का काल हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं इसके लिए। तो तब उन्होंने कहा कि आपको वापस जंगल जाके आपके भाई को भेंट करके उनको बोलना होगा कि आप मेरा राज्य ले लो। तो शांतनु ने सोचा ठीक है, वो जंगल की ओर गए उनके भाई को ढूंढने के लिए, देवापी को। जब ढूंढने के लिए जब गए तो ब्राह्मणों को मालूम था कि ये देवापी जो है वो योग्य नहीं है। तब शांतनु के विचार किए बिना या उनको बताए बिना उधर ब्राह्मणों ने क्या किया, एक ऐसा एक दूत को भेजा कि आप जाओ जाके देवापी जो है उनका जो दिमाग जो है थोड़ा सा भ्रष्ट कर दो, वैदिक सभ्यता के विरुद्ध कर दो। तब शांतनु जब गए देवापी से मिलने के लिए, देवापी ने उनको कहा, वैदिक संस्कृति को उन्होंने बहुत निंदा किया, निंदा करके उन्होंने कहा कि नहीं मुझे राज्यवाज स्वीकार नहीं करना है। तो शांतनु वापस आए, वापस आने के बाद उन्होंने सोचा और कोई तो चारा नहीं है, तो वो राज्य चलाना शुरू किया। तब इंद्र ने सोचा कि अभी शांतनु में इसमें कोई दोष नहीं है, वैसे तो वो ये जो सिंहासन है इसके प्रति आसक्त नहीं है, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने बड़े भाई का हक को उन्होंने छीन लिया, उनके बड़े भाई अपने वैदिक पिता के विरुद्ध हो गए, तो विरुद्ध होने के नाते अभी और कोई तो चारा नहीं है, तो ये राज्य चलाने के लिए और कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए शांतनु योग्य व्यक्ति है। करके इंद्र ने सोचा कि फिर वापस में बारिश गिराऊंगा। तो इस प्रकार शांतनु का राज्य वापस चलने लगा। तो ये देवापी के विषय में 18 और 19 श्लोक में कहा गया है। अभी जैसे सोम वंश जो है आगे चलते चलते जब कलयुग में समाप्त हो जाता है, वंश का भ्रष्ट हो जाता है, सूर्य वंश और सोम वंश जो है कलयुग में बीच में ही, कलयुग जैसे आगे बढ़ता जाएगा, यानी सत्य अभी तो है ही नहीं, सोम वंश और चंद्र वंश कुछ इधर उधर बच्चे कुछ राजा, तो ये जो अगले जो चित्रयुग शुरू होगा यानी ये कलयुग समाप्त होके जब वापस सत्ययुग शुरू होगा, ये देवापी जो है वो वापस चंद्र वंश का स्रोत बनेगा। और ये शांतनु के और एक छोटे भाई थे जिनका नाम था बाहिलक। तो ये बाहिलक जो है ये भी बड़े राजा हुए और उनके आगे 2-3 पुत्र हुए। इनका नाम था सोमदत्त, और सोमदत्त के भी अन्य पुत्र थे, उनका नाम था भूरी, भूरीश्वर और शाल। और शांतनु के गर्भ से या शांतनु गंगा माता के गर्भ से भीष्म देव को जन्म लिया, जो बड़े विख्यात थे और महाभागवत कवि। अभी भीष्म देव का प्रसंग इस श्लोक में आगे वर्णन हुआ है, यानी पिछले के जो 3 श्लोक के जो तात्पर्य नहीं है उसका सार ये है कि शांतनु का राज्य में अकाल पड़ना और इंद्र ये सोचना कि शांतनु का इसमें कोई गलती नहीं है, वापस अकाल दूर होके बारिश गिरने लगा, और शांतनु का जो भाई है उनके जो पुत्र है उनका वर्णन हुआ यानी बाहिलक, दूसरा जो भाई है देवापी वो आगे सत्युग से वो सोम वंश का जो वंश है उनको आगे प्रचार करेंगे या सोम वंश को वृद्धि करेंगे, ये सब वर्णन अभी तक हुआ है। तो इधर एक बाहिली का ये जो भाई है शांतनु के, इसके विषय में थोड़ा सा कहना चाहते हैं संस्कृत में एक शंकुकर्ण करके एक ब्रह्मलोक में एक बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। वो ब्रह्मा जी को सहयोग देते थे भगवान की विग्रह की सेवा में। जो एक दिन ऐसा हुआ, तुलसी भगवान को अर्पण करने के लिए लेके आना था शंकुकर्ण को, लेकिन जब शंकुकर्ण को लेके आना था थोड़ा देर हो गया, उसकी वजह से ब्रह्मा जी ने उनको शाप दिया। उन्होंने कहा कि आप ये जो है इस जगत इस ब्रह्मलोक में रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि इधर भगवान का पूजा जो है बड़े निष्ठा से होता है, कोई भी जरा सा भी इसमें कमी नहीं होता है, तो आपने देर कर दिया इससे आप इधर रहने के लायक नहीं हो। तो ब्रह्मा जी ने जैसे उनको शाप दिया, शंकुकर्ण को 4 बार इस जगत में जन्म लेना पड़ा। तो सबसे पहला जन्म उनका हुआ प्रहलाद के रूप में, दूसरा ये बहिलक के रूप में हुआ, तीसरा है व्यास तीर्थ के रूप में, चौथा है राघवेंद्र स्वामी के रूप में। ये मध्य संप्रदाय में जो आचार्यों की वर्णन आती है, श्रीपाद राघवेंद्र स्वामी व्यास तीर्थ, उस चरित्र में आता है किस प्रकार प्रहलाद का ये 4 जन्म है। उनमें से ये बहिलक, वो भी बड़े महान भक्त हुए भगवान के, उसके विषय में वैसे महाभारत में विस्तार से चर्चा नहीं आती है, भले ही वो कौरवों के पक्ष में उनको रहना पड़ा, लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण के बड़े महान भक्त माने गए बहिलक। और जैसे भी भीष्म पितामह का वर्णन हो रहा है, तो आज के श्लोक के अनुसार और कल के या 19वां श्लोक में जिस भीष्म पितामह का वर्णन हुआ है, हम भीष्म पितामह के बारे में ज्यादा चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। 19वां श्लोक में आखिर में कहा गया है, सर्वधर्म विधान श्रेष्ठो महाभागवत कवि। तो गंगायाम भीष्म आत्मवान सर्वधर्म विधान श्रेष्ठो महाभागवत कवि। तो भीष्म पितामह का वर्णन किस प्रकार हुआ है 19वां श्लोक में, गंगायाम भीष्म आत्मवान, गंगा जी के पुत्र है। गंगा तो साधारण नहीं, हम सब जानते हैं गंगा भगवान की विष्णु पादोद का, उनका भी शांतनु के साथ बड़ा सुंदर प्रकार कुछ लीला के अनुसार विवाह हुआ। तो गंगा जी ने कहा शांतनु के साथ मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन तभी तक रहूंगी जब तक हमारा कुछ पुत्र न हो। जैसे भीष्म का जन्म हुआ तो गंगा जी वो चली गई। तो भीष्म पितामह के वर्णन हुआ है, सर्वधर्म विदाम श्रेष्ठो। भीष्म पितामह कौन है, वो सारे धर्मों को जानते हैं। वैसे तो वो एक वसु है, वन ऑफ द वसु, वसु अष्ट वसुओं में से एक वसु है भीष्म पितामह। वसुगण भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं और बड़े ज्ञानी भी होते हैं, सारे विद्वान होते हैं। तो भीष्म पितामह सारे धर्मों को जानने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि जब भीष्म पितामह का प्रकट जब हो रहा था, उस समय भागवत में भी वर्णन है और महाभारत में भी वर्णन है, किस प्रकार ऐसा कोई विषय वस्तु नहीं है जिसके विषय में जिसके बारे में भीष्म पितामह ने वर्णन नहीं किया हो। हजारों हजारों जगह प्रवचन दिया उन्होंने, हजारों हजारों लोगों के सामने प्रवचन दिया। ऐसा वर्णन आता है कि जिस प्रकार भीष्म देव का जो अप्रकट होना और परीक्षित महाराज से जब प्रकट होना और श्री प्रभुपाद जी का प्रकट होना, तो ये तीनों प्रसंगों में क्या था कि सारा जगत को वास्तविक धर्म क्या है उसको वर्णन करते करते अनेकों अनेकों मन संतों के सामने प्रसंग चलते चलते अप्रकट होना हुआ। तो ये साधारण प्रसंग नहीं है ये विश्वदेव का प्रकट होना। इधर विश्वदेव का प्राकट के विषय में से पहले से कहा गया है कि सर्वधर्म विधान श्रेष्ठ, सारे धर्मों का के बारे में जानते हैं और वो श्रेष्ठ है, और साथ साथ में कौन है, महाभागवत कवि ही, वो महाभागवत है, ग्रेट भागवत। हम जानते हैं द्वादश महाजनों में भीष्म पितामह का नाम आता है, ये द्वादश महाजन एवं भीष्म पितामह का नाम हम बार बार जानते हैं, लेकिन हमेशा लोगों के मन में प्रश्न आता है अगर वो महाभागवत है, कवि है, सारे धर्म विधान है, सब कुछ होने के बाद भी वो कौरवों के पक्ष में क्यों थे, वाई इज द साइड ऑफ द कौरवर्स। हाँ, अनेकों कारण बताया जाता है कि कौरवों के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का नमक खाया, और कोई बताया नहीं, नहीं उन्होंने धर्म का या हस्तिनापुर की गद्दी को संरक्षण करने का प्रण लिया था, सब कुछ अनेकों बात बताते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा विस्तार से हम उसके बारे में चर्चा करने के प्रयास करेंगे। भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में क्यों थे? भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं कि महानुभावान गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षु अपी है लोके हत्वार्थ कामांस गुरुनि है मुंजिये भोगान रुडिरत प्रदिग्धान। तो ये श्लोक अति महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण गुरुन हत्वा ही महानुभावान। तो भीष्म और द्रोणाचार्य अभी कौरवों के पक्ष में हैं और मेरे गुरुजन हैं और उनको वो महानुभाव है, वो साधारण लोग नहीं है। तो ये महानुभाव कैसे हुए? अर्जुन भीष्म पितामह को महानुभाव करके क्यों पुकारा? इसलिए इसी श्लोक में सारस्वत अर्थ लेते हुए कहा गया कि ही महानुभावान, ये दो शब्दों को अगर जोड़ेंगे आता है कि हिमहा प्लस अनुभवान। तो भीष्म पितामह का संबोधन करते हुए सरस्वती दी तुलना करती है हिमहा। हिमहा का अर्थ क्या है? हिमा का अर्थ है स्नो यानी बर्फ, आइस। हा का अर्थ है हनन, यानी जो बर्फ को हनन करने वाला कौन सा है? सूर्य। मान लो रास्ते में बर्फ है तो सूरज उगते ही वो पिघल जाता है, तो इसलिए सूर्य का नाम है हिमहा। तो गुरु न हत्वा ही महानुभावान, अगर उसका संधि विच्छेद इस प्रकार करेंगे गुरु न हत्वा ही महानुभावान, इस प्रकार करेंगे जिस प्रकार हिमहा यानी सूर्य है उसी प्रकार भीष्म देव है। यानी इस श्लोक में सरस्वती सारस्वत अर्थ यह है कि भीष्म पितामह सूर्य के समान है। तो सूर्य का समान है तो सूर्य का गुण क्या है? सूर्य का जो किरण है वो मल को स्पर्श करता है। सूर्य का किरण मल को स्पर्श करने के बाद भी सूर्य वो उस मल के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में रहने पर भी वो कौरवों का प्रदूषण से वो प्रभावित नहीं है, जिस प्रकार सूर्य मल के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है जैसे सूर्य मल को क्यों स्पर्श करता है, क्या जरूरत है? वो अलग हो सकता है लेकिन सूर्य का एक स्वभाव है। स्वभाव क्या है? अशुद्ध चीजों को शुद्ध करना उनका स्वभाव है। इसलिए भीष्म पितामह भले ही कौरवों के पक्ष में थे, वह अपने ऊपर वो कौरवों के पक्ष में होकर अशुद्ध होने की बात तो छोड़िए, लेकिन कौरवों के पक्ष में होने के कारण कौरवों का शुद्धिकरण हुआ। अभी कोई बोले कौरवों का शुद्धिकरण कैसे हुआ, भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में है? तो तब उसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है शिव जी का। शिव जी भगवान के महान भक्त है, होने पर भी ऐसा देखा गया है कि उन्होंने कृष्ण से युद्ध किया। कृष्ण से क्यों युद्ध किया? उन्होंने बाणासुर का पक्ष लिया और कृष्ण से उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम्। अगर भगवान को विनाश करना है, दुष्कृतियों को मारना है, तो दुष्कृतियां अलग अलग एकत्रित है, एक इधर एक उधर है, वो कहां जाके ढूंढ के मारने लग जाएंगे, नहीं हो पाएगा। इससे सारे दुष्कृतियों को एकत्रित करना है, तो एकत्रित करना तो युद्ध होना जरूरी है। अभी इधर दुर्योधन कौरव वो पांडवों से तभी युद्ध करेंगे, युद्ध करने की हिम्मत भी करेंगे जब भीष्म पितामह उनके पक्ष में हो। अगर भीष्म पितामह दुर्योधन के पक्ष में ना होते, दुर्योधन सपने में भी नहीं सोचता कि मैं युद्ध करूं। अगर दुर्योधन युद्ध नहीं करता, विनाशाय दुष्कृतम नहीं हो पाता। तो इसलिए तीसरा कारण है भीष्म पितामह क्यों कौरवों का पक्ष लिए। जैसे शिव जी अगर बाणासुर को वध होना होता या वध हो होना है तो कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध होना चाहिए। अगर शिव जी बाणासुर को सपोर्ट नहीं करते, क्या बाणासुर का कोई हिम्मत है कृष्ण युद्ध करने की? हिम्मत नहीं है। इसकी वजह से शिव जी ने क्या किया, ठीक है मैं सपोर्ट करता हूं तुमको, युद्ध करो मर जाओ। तो इसलिए जिस पक्ष में शिव जी जुड़ते हैं वो उसका निश्चित रूप में मृत्यु होता है। है बोलते मैं सपोर्ट करता हूं तुम आगे, उनका मृत्यु होगा। रावण का भी ऐसे हुआ, बाणासुर का भी ऐसे हुआ। तो इधर भीष्म पितामह अभी उसी प्रकार का एक रोल को अपना है। तब कोई प्रश्न उठा सकते, नहीं युद्ध तो किया ना, जैसे शिव जी ने कृष्ण के साथ युद्ध हुआ, बाण चलाए, सब कुछ हुआ, ऐसा थोड़ी ना अपने आराध्य देव की बाण चलाया जा सकता है। तो भीष्म पितामह ने क्या किया, कृष्ण के ऊपर बाण चलाए, उनको चोट पहुंचाए, उनके शरीर से खून आने लगा, अनेकों अनेकों बातें लोग कहते हैं। तो युद्ध तो किया, ऐसा थोड़ी ना भक्त को ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए। तो भक्त की परिभाषा हमारी नजरियों से नहीं देखना चाहिए, शास्त्र की नजर से देखना चाहिए। भक्त जो है भगवान के साथ संबंध है, वो संबंध जो है वो अलग अलग प्रकार का है। हम सब जानते हैं शांत दास सात की बात, वात्सल्य माधुरी, पांच प्रकार का संबंध है। और साथ साथ में सात गौण रस है, उसमें से एक रस है वीर रस। जैसे कभी कभी हम देखते हैं जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो कहता है वो पिताजी को मारता है, मुक्का मारता है, या माँ को भी मारता है। इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि ये दोनों में कुछ दुश्मनी है, नहीं, वो वीर रस है, वो दोनों के बीच में वो आस्वादन होता है। उसी प्रकार भीष्म पितामह जब वो कृष्ण के ऊपर बाण फेंक रहे थे तो कृष्ण को ऐसा लग रहा था कि फूलों की माला मेरे गले में गिर रही है। तो ये भीष्म पितामह का कृष्ण के साथ इस प्रकार का संबंध है, वीर रस का संबंध है। तो कृष्ण को बहुत अच्छा लग रहा था। और जब भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान जब अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ के जब भाग के आ रहे थे, उस समय भीष्मदेव अपनी सारे अस्त्र शस्त्रों को छोड़ के भगवान का वो सुंदर रूप का वर्णन करते हैं, जिसके शरीर से खून बह रहा है, पसीना आ रहा है, और धूल से जमा हुआ जो सर के बाल है उड़ रहे हैं। ये जो रूप का वर्णन करते हैं भीष्म पितामह, और आस्वादन में आस्वादन कर रहे हैं। तो वीर रस में जो भक्त होते हैं तो इस प्रकार का आस्वादन करते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं माना जाता। तो इस प्रकार भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष पर रहने पर भी उस पर दोष नहीं माना गया है। आखिरी बात यह है, कभी कभी ऐसा होता है भगवान अपने भक्तों को कहते हैं कि आप मेरे विरुद्ध हो जाओ। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को कहा, आप जाके श्रीपाद शंकराचार्य के रूप में अवतार लेके क्या करो, मायावाद भाष्य रचना करो। तो मायावाद भाष्य रचना करो, ये इनके विरुद्ध सिद्धांत है, लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्होंने मायावाद भाष्य रचना किया। उसी प्रकार भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में रहना ये भगवान की योजना के अनुसार है। और साथ साथ में ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान जब कोई शिक्षा देना चाहते हैं सारे जगत को, वो शिक्षा जो है वो अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा ही देते हैं। जैसे अर्जुन जो है वो कभी अज्ञान में नहीं है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अज्ञान में डाल के हमको भगवद्गीता प्रदान किया, हमको भगवद्गीता उपदेश दिया। उसी प्रकार भगवान ने भीष्म पितामह के माध्यम से सारे जगत को उपदेश दिया, अगर आप दुष्ट व्यक्ति का नमक खाओगे तो तुम्हारा मन भी प्रदूषण हो जाएगा। वैसे भीष्म पितामह का मन में कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन अगर दुष्टों का अन्न खाएंगे जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं या भक्ति में नहीं रहते हैं, उनका अगर थोड़ा सा भी हम कुछ स्वीकार करेंगे तो हम उनके मानसिकता का गुलाम बन जाएंगे और उनके मन का जो प्रदूषण हमारे मन में आ जाता है। इसलिए ये अन्न दोष है, उससे बच के रहना चाहिए। ये शिक्षा सारा जगत को भगवान ये भीष्म पितामह के द्वारा हमको देते हैं। अभी इस श्लोक में प्रसंग ये है, भीष्म पितामह का वीरता का वर्णन हुआ है। भीष्म पितामह का वीरता इतना महान है, दुर्योधन इस बात को जानता था। बार बार भीष्म पितामह को उन्होंने कहा, देखो हे भीष्म पितामह, अगर आए तो एक बाण तक उड़ा सकते हो। तो इसलिए दुर्योधन भगवद गीता के पहले अध्याय में ही वो कहते हैं, भगवान भीष्मश्च कर्णस्य, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को कहते हैं, हे द्रोणाचार्य हमारे साथ में आप है और साथ साथ में भीष्म है। तो भीष्म पितामह को उत्साहने के लिए हमने कहा कि भवंतः सर्वैव हि भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवंतः सर्वैव हि, चलो हम जाके भीष्म पितामह को रक्षा करेंगे। तो दुर्योधन ने सोचा कि भीष्म पितामह को ऐसा बोलेंगे थोड़ा सा उनके अंदर क्रोध आएगा। बाद में उन्होंने कहा, अपर्यात्म दस्माकम भलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम तदमे तेषाम भलम भीमाभिरक्षितम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद्गीता का, जिसमें अंदर दुर्योधन कहता है कि हमारा जो बल है वो अपर्याप्त है, क्योंकि हमारी जो और कौन है, भीष्म है, जिसकी पराक्रम की कोई सीमा नहीं है, अपर्याप्तम। और दूसरी ओर भीष्म है, उनका पराक्रम जो है उसका सीमा है। भले वो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारा जो भीष्म पितामह हमारे पक्ष में होने के नाते उनकी पराक्रम असीम है, लेकिन भीष्म की जो पराक्रम है वो उसके अंदर सीमता है। लेकिन सांसार में दुर्योधन ही कहता है, भले ही हमारे पक्ष में भीष्म पितामह है जिसकी पराक्रम कैसा है, असीम है, असीम होने पर भी हमारे लिए वो अपर्याप्त है। क्यों अपर्याप्त है? भीष्म पितामह भले ही उनका पराक्रम असीम है, अपर्याप्त पराक्रम है, होने पर भी हमारे लिए वो अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह का आसक्ति है अर्जुन के प्रति। इसलिए दुर्योधन इनडायरेक्टली भीष्म पितामह को कहते हैं कि आप अपना पांडवों के प्रति आसक्ति कम करो और मेरे लिए पूर्ण तरीके से शरणागत युद्ध करो। भीष्म पितामह हंसते हुए शंख लेके बोलते, मैं पूरा तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, लेकिन ये मत सोचो कि तुम जीतोगे, क्योंकि दूसरों के पक्ष में, पांडवों के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। विष्णु का चिन्ह है ये शंख, शंख को बजाते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, हे दुर्योधन, पांडवों के पक्ष में कृष्ण है, आप कितना भी लाख प्रयास करो, चाहे मैं अपना पूरा वीर शूरता कितना भी दिखा दो, लेकिन जीत जो है पांडवों की होगी। तो भीष्म पितामह की शूरता इतना महान है कि वो स्वयं उन्होंने क्या किया, परशुराम जी को उन्होंने प्रसन्न किया। तो पूरा स्टोरी इधर वर्णन हुआ है, किस प्रकार परशुराम जी को वर्णन हुआ है, रामोपि युधि तोषितः, दूसरा लाइन में आता है इधर, इधर रामोपि कार्ते परशुराम को। अभी प्रसंग इस प्रकार है कि अंबिका, अंबालिका और अंबा, अंबा अंबिका अंबालिका, ये तीनों राजकन्याएं थी और विचित्र वीर और चित्रांगद, इन दोनों को विवाह कराना था। तो भीष्म पितामह तो पहले से उन्होंने एक संकल्प लिया था, मैं ब्रह्मचारी व्रत पालन करूंगा। तो ऐसा हुआ, इन तीनों का अपहरण करके लेके आए। तो अंबा ने कहा कि मैं विचित्र वीर या चित्रांगद से विवाह नहीं करूंगी। करूंगी तो आपसे ही करूंगी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। भीष्म पितामह ने कहा नहीं, तो अम्बा बहुत जिद पकड़ ली और भीष्म पितामह से इतने आसक्त हो गए, वो जिद इतना था कि वो जाके परशुराम को कंप्लेंट किया। परशुराम जी ने कहा ऐसा है क्या, चलो मैं अपने शिष्य को बोलता हूँ। तो तब इधर भीष्म पितामह ने उनका जो गुरु का आज्ञा स्वीकार नहीं किया, नहीं मैं अपना जो व्रत है उसको पालन करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा मैं पालन नहीं करूंगा। तो परशुराम ने कहा चलो युद्ध करो। तो परशुराम दोनों के जो युद्ध हुआ, परशुराम जी हार गए। परशुराम जी साक्षात भगवान के अवतार है लेकिन फिर भी कैसे हार गए, अत्यंत में उनके भक्त प्रति इतना वात्सल्यता है कि भगवान दिखाना चाहते हैं कि मेरे जो शिष्य है वो कितने महान है। हमेशा भगवान जो है अपनी जो भक्तों की महत्ता को बढ़ाना चाहते हैं। उधर भी भगवान ने भीष्म पितामह की महत्ता को बढ़ाया और साक्षात में युद्ध के पूरा पश्चात युधिष्ठिर आके रोने लगे, ओ मैंने युद्ध क्यों किया, जैसे अर्जुन का हालत युद्ध के पहले था, युधिष्ठिर का हालत युद्ध के बाद हो गया। सब बोलने लगे मैं राजवाज नहीं संभालूंगा, मैं चले जाऊंगा जंगल, जैसे अर्जुन ने कहा था मैं जंगल चले जाऊंगा। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको ये सब राज संभालना चाहिए, बहुत उपदेश दिए। भगवान कृष्ण बाहर से युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे और हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में बैठ के बोल रहे इसको समझो मत। तो ऐसा कहते कहते उन्होंने कहा चलो मैं तुमको समझा नहीं सकता, चलो भीष्म पितामह के पास। तो भीष्म पितामह ने समझाया युधिष्ठिर महाराज को, इससे पता लगता है कि भगवान जो है हमेशा अपना श्रेय भक्तों को देना चाहते हैं। इधर भी रामोपि यदि तोषितः, भगवान ने क्या किया, बहुत प्रसन्न हुए भीष्म पितामह का इस प्रकार का ये वीरता को देख के। तो बाद में क्या हुआ, अम्बा ये भौतिक स्तर में अगर किसी से प्रेम होता है ये समझना चाहिए, जितना प्रेम होता है उतना वो दुश्मनी भी होता है। तो अम्बा ने सोचा कि भीष्म पितामह मुझे प्राप्त नहीं हुए, चलो अगर मुझसे विवाह नहीं किए, मेरी इच्छा को पूरा नहीं किया, मैं उनको मार दूंगी। हाँ पहले अम्बा का आसक्ति था नहीं भीष्म पितामह से विवाह करूंगी, अभी वही सोचती है उसको मार दूंगी। उसको मारने के लिए उन्होंने बड़ी तपस्या की, आग में वो जल गई और अगली बार वही अम्बा जो है प्रकट हुई किस रूप में, शिखंडी के रूप। तो जब शिखंडी के रूप में जब आई युद्ध करने के लिए भीष्म पितामह के सामने, भीष्म पितामह जो है वो शिखंडी को नहीं देख रहे थे, अम्बा को देख रहे थे। तो मैं स्त्री से युद्ध नहीं करूंगा करके भीष्म पितामह ने अपने हथियार को छोड़ दिए थे। तो ये अम्बा ऐसी एक कैरेक्टर है महाभारत में जो ज्वलंत उदाहरण है, किसका, भौतिक स्तर में जो प्रेम है वही द्वेष का कारण बनता है। जो भौतिक स्तर में अगर कोई आपसे प्रेम करता है ये समझ लीजिए कि वो खाली द्वेष आना बाकी है। एक समय तो ब्रह्मा सोच रही थी बस उसी से विवाह करूंगी, अभी वही सोचती है भीष्म पिता को मारूंगी। अम्बा का आगे इधर कहा गया है इस श्लोक में सत्यवती के विषय में। सत्यवती भले ही हमको ऐसा लगता है कि इधर दिख रहा है कि कोई मछुआरे की पुत्री है, मछुआरे की पुत्री नहीं है, एक वसु था जिनका नाम था उपरिचर वसु। उपरिचर वसु जो है वो जब कोई नदी में नहा रहे थे उस समय उनका वीर्य छूट गया था, तो उस समय उस वीर्य को कोई मछली ने ले लिया था, तो उससे एक कन्या उत्पन्न हुई जिसके नाम से सत्यवती। तो सत्यवती का इतिहास इस प्रकार है, व्यास देव की भी माँ रह चुकी है और पराशर ने गर्भ प्रदान किया, फिर भी कन्या के रूप में अपना बना के रखी और व्यास देव ने सत्यवती को वरदान दिया था, जब भी आप सोचोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो विचित्र वीर और चित्रांगद का मृत्यु के बाद, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं हुआ, तो सत्यवती ने व्यास देव को बुलाया। तब अंबिका और अंबालिका उनके गर्भ से वो और पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था पांडु और धृतराष्ट्र और पांडु। तो ये पूरा महाभारत की इस प्रकार की कहानी है। तो शांतनु के प्रसंग में भी ये भीष्म पितामह का ये सब पूरा वर्णन चल रहा है। सार रूप में देखना चाहिए कि ये सब जितने भी चरित्र चल रहा है, अभी कृष्ण कथा को प्रारंभ होने वाला है दसवां स्कंद में, तो ये सब चीजों का इनसे क्या संबंध है। तो वैसे मैं भी इसी बारे में सोच रहा था, प्रभुपाद जी का जो पहला भगवद गीता का पहला अध्याय के पहले के जो श्लोक है, उन श्लोकों के ऊपर प्रभुपाद जी ने अनेकों अनेकों जगह प्रवचन दिए। वैसे कोई अन्य आचार्य ने पहले भगवद गीता का पहला अध्याय के ऊपर व्याख्या भी नहीं किया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने पहला अध्याय के ऊपर विस्तार से व्याख्या भी नहीं, बल्कि वो अनेकों अनेकों जगह प्रवचन भी दिया। हाँ, धर्म क्षेत्र से लेके बीच में जहाँ दुर्योधन पांडवों के पक्ष में सेनाओं का वर्णन करता है, अपने पक्ष में सेनाओं का वर्णन करता है, तो श्लोक के प्रवचन में प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह कि ऐसा लगता होगा कि ये सब जो है इनके साथ क्या संबंध है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सब भगवद गीता में उनका नाम है, नाम होने के नाते वो सब कृष्ण के साथ उनका संबंध है, चाहे दुश्मन के रूप में भी क्यों ना हो कृष्ण के साथ संबंध है। तब वो श्लोक कोट करते हैं कि प्रापच्यकतया बुद्धया अरिसंबंधी वस्तुना मोक्ष विपरीत्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। जो लोग ये सोचते हैं कि ये सब चीजें कहाँ नहीं है रे, ये सब चीजें कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, तो उनका जो वैराग्य इन चीजों से वो फलगु वैराग्य माना जाता है। क्यों? इन सब का कृष्ण के साथ संबंध है, संबंध होने के नाते हमको ये चीजों को दिव्य स्तर में देखना होगा। तो उनके जो द्रौपदी जी का ये पहला अध्याय का भगवद गीता का पहला अध्याय के ऊपर प्रवचन से ये हमको प्राप्त होता है। नहीं तो अगर ये नवा स्कंद पढ़ेंगे उसके अंदर ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र बातें हैं, देख के ऐसा लगता है कि क्या कृष्ण कथा हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि अभी दसवां स्कंद आने वाला है, कृष्ण कथा का पूरा विस्तार से वर्णन होने वाला है, उसकी तैयारी लास्ट तैयारी चल रही है, यानी पॉलिशिंग चल रहा है। पॉलिशिंग का अर्थ क्या है कि हमारी चेतना कृष्ण कथा को श्रवण करने की एकदम बिल्कुल योग्य बनाने की तैयारी चल रही है। तो तैयारी कैसे होगी? जब हम देखेंगे कृष्ण और कृष्ण के संबंधित वस्तुओं को साथ में देखेंगे, कृष्ण को अकेले नहीं, संबंध के साथ। वैसे भीष्म पितामह का ये जो प्रसंग है, उनको भी कृष्ण के संबंध में देखना है। ये इन श्लोकों के ऊपर कुछ चीजें हैं। हरे कृष्ण। कोई इनका प्रश्न है कि कृष्ण कहते हैं बार बार भगवद गीता में मेरा स्मरण करो, मेरा प्रणाम करो, वही वही आके शंकराचार्य बोलते हैं इसको इसका विरुद्ध लिखो, है कि नहीं? तो भगवान का एक योजना है श्रीपाद शंकराचार्य को भेजने के पीछे, वो ये योजना है कि इस जगत में सारे जीव कृष्ण के पूर्ण तरीके से शरण नहीं लेंगे, ये निश्चित बात। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं भगवान बनूं, उनके मन में ऐसा विचार है। निगम कल्पतरु, निगम क्या है? कल्पतरु है। कल्पतरु का अर्थ क्या है? हर व्यक्ति का इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। कल्पतरु, किसी की कल्पना ऐसी है कि मैं भगवान बनूं, तो उनमें निगम में होना चाहिए, या निगम जैसा कुछ होना चाहिए जो इस प्रकार की मनोवृत्ति को पोषण कर सके, ऐसा कुछ शास्त्र होना चाहिए। इसलिए भगवान ने शंकराचार्य कहा वैसे लोगों को आप एक शास्त्र दे दो, ताकि वो सब लोग जाके उस शास्त्र को पढ़ते जाएंगे और सोचते रहेंगे मैं भगवान। जैसे इस बम्बई में कोई भी सिटी में कोई प्रांत में हर प्रकार के जीव है कि नहीं? आप सोचोगे मैं काली मकान बनाऊंगा और कोई नहीं रहना चाहिए, गलत बात है। मनुष्यों के लिए मकान है, चींटियों के लिए एक स्थान है, कबूतरों के लिए एक स्थान है। अगर आप सुंदर बिल्डिंग बनाओगे, कबूतरों के लिए अच्छा स्थान नहीं बनाओगे तो क्या होगा? हाँ, लेकिन उसी प्रकार ये सुंदर वैष्णव सिद्धांत के निर्माण करोगे, चार वैष्णव आचार्य आके बनाएंगे और कबूतरों के लिए स्थान नहीं बनाओगे तो क्या होगा? हाँ, उसी प्रकार एक चबूतरा की जरूरत है। असत शास्त्रम मायावादम असत शास्त्रम, जिसके अंदर सब जा सकते हैं, हम ब्रह्मास्मि सोहम सोहम वाले सब उधर जा सकते हैं। तो आप शांति से हरे कृष्ण जप कर सकते हो, नहीं तो आप आएंगे कोई सोहम वाला आएगा बोले सोहम सोहम बोले तुम्हारे कृष्ण कर करोगे तो आपके लिए एक अलग स्थान है, उस सकते हैं आप सोहम। ये किसके लिए? हमारे लिए है, ताकि आप उस सिद्धांत के द्वारा प्रभावित ना हो, है कि नहीं? जैसे माया के साथ युद्ध जो है वो बंदूक से भी होता है और कवच से भी होता है, कि नहीं? कि सिद्धांत जानने के द्वारा ये हमको कवच मिलता है माया से बाहर करने। तो आप ये जो सिद्धांत है उसको लेके उसको ऊपर अटैक करने मत जाओ। ये खास करके जो दूसरा मत को खंडन करना वो इसलिए जरूरी है ताकि हमारे मन में उस प्रकार का मत उत्पन्न ना हो। इसका अर्थ ये नहीं कि अभी बस मैं फिलॉसफी जान लिया है, ये श्लोक जानता हूँ, चलो उसको जाके प्रारब्ध करता हूँ, वो माया है, वो नहीं करना चाहिए। उनको अपना काम करने दो और हम अपना काम करेंगे। लेकिन हम अपने पास सारा अमुनिशन है, सारा शास्त्र का तर्क विज्ञान सब कुछ है, ताकि प्रदूषण ना हो। ठीक है, ये वैदिक सिद्धांत है। ये बात बाकी लोग नहीं समझ सकते। जब शिष्य गुरु से आगे बढ़ता है, गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं। परशुराम भीष्म पितामह के गुरु है, युद्ध गुरु है ऐसे लिखा गया। जब भीष्म पितामह इतना अच्छी तरह से युद्ध किया, परशुराम जी सोचने लगे ये तो मेरे से अच्छा है, ये तो मेरे से अच्छा है। ये जैसे कोई पिता है वो देखते पुत्र मेरे से बुद्धिमान है तो उसको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, वैसे गुरु जब देखते हैं कि शिष्य मेरे से अच्छा तब वो बड़े प्रसन्न होते हैं। अस्तित्व में ऐसी मानी जाती है संप्रदाय सिस्टम के अनुसार, जब कोई गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं, आचार्य की पदवी में तब उनको नियोजित करते हैं, जब वो शास्त्र की चर्चा में जब ये देखते हैं कि वो जो चर्चा कर रहे हैं उसका जो अर्थ बता रहे हैं वो मेरे से अच्छा बता रहे हैं, अभी वो स्वयं उसी समय वो अब उनकी पोजीशन में उनको बिठा देते हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य के साथ ऐसे ही हुआ, जब उनके गुरु ने देखा कि ये तो कुछ ही दिन 2 साल हुआ दीक्षा लेके, लेकिन इनका विद्वत्ता इतना महान है, तो अस्तित्व में मैं कौन गुरु कौन शिष्य है। बड़े प्रसन्नता के साथ उन्होंने उनको आचार्य की पदवी घोषणा करके दिया। तो ये वैदिक सभ्यता है, व्हेनेवर ए डिसाइपल बिकम्स बेटर देन गुरु, गुरु बिकम्स वेरी प्लीज। रादर गुरु वो दिन का इंतजार करते वो कब मेरा शिष्य मुझसे अच्छा होगा। प्रभुपाद जी ने इसी बात को कहा कि मैंने जैसा किया वैसे करो, मैंने जैसा बोला वैसा करो। तब किसने पूछा प्रभुपाद जी से ऐसा आपके जैसे कैसे कर पाएंगे? ने कहा कि यू डू मोर देन मी, डू मोर देन। ठीक है, रविंद्राश्रम भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय।